ओम शांति। राजयोग के पूर्व सत्रों में मूल योग से संबंधित स्वयं का और पिता परमात्मा का सत्य परिचय आप सभी ने प्राप्त किया कि हम स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा है और हमें योग लगाना है उस परम चैतन्य शक्ति परमात्मा से। बिना परिचय मिलन कैसे मना सकते हैं? यही कारण हुआ भक्ति में अनेक साधनों का आधार लिया, अनेक क्रियाएं की, फिर भी मन भटकता ही रहा। अब हमें कोई साधनों की आवश्यकता नहीं, कोई क्रियाओं की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मूल सत्य ज्ञान स्वयं के बारे में और पिता परमात्मा के बारे में आप सभी ने प्राप्त कर लिया है। जैसे एक दूसरे परिचय होने के बाद हम याद करना चाहें तो एक दो को कर सकते हैं, ऐसे ही परमात्मा पिता को भी मन और बुद्धि से हमें याद करना है। तो जितना स्वयं को जानना और पिता परमात्मा को पहचानना आवश्यक है, उतना ही इस सृष्टि खेल को जानना भी जरूरी है कि जिस दुनिया में हम आए हैं, कर्म कर रहे हैं, ये सृष्टि का खेल क्या है, कैसे चलता है। तो स्वयं पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हम आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो ज्ञान दिया है वो मैं आपके सामने रखूंगी। सृष्टि का खेल प्रकृति और पुरुष का बना हुआ खेल है। अब तक हम ये समझते रहे कि ये स्त्री और पुरुष का खेल है, नर और नारी से ये संसार का खेल चलता है, परंतु अब आपको स्पष्ट है कि शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मैं स्त्री हूं ये गलत कॉन्शियसनेस है, मैं पुरुष हूं ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। शरीर से कोई स्त्री है, शरीर से कोई पुरुष है। हम तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। तो प्रकृति माना पांच तत्व, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। प्रकृति के ये पंच महाभूत हैं और ये दुनिया फिजिकल वर्ल्ड है, ये भौतिक जगत है, प्रकृति के पांच तत्वों से बनी हुई है। हम इन आंखों से जो भी देख रहे हैं वो भौतिक चीजें हैं, प्रकृति के पांच तत्वों से बनी है। ये पांचों ही तत्व अनादि और अविनाशी है, न इसकी उत्पत्ति होती है न इसका अंत होता है। भल वैज्ञानिक खोज करते रहते हैं, परंतु हर कोई अपने खोज के फल स्वरूप अपना विचार देते हैं, अंदाजे से बताते हैं कि लगभग करीब इतने करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्य निहारिका से अलग हुआ, इतने करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी सूर्य से अलग हुई, इतने करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी ठंडी हुई, फर्स्ट लेयर बना, सेकंड लेयर बना, ये वैज्ञानिक बताते हैं। लेकिन इसका सत्य आंसर परमात्मा ने यही बताया है कि ये अनादि और अविनाशी है। इसलिए हम कहते भी हैं कि भौतिक शक्ति न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, वो केवल रूपांतरित होती रहती है। इसी प्रकार पुरुष माना आत्मा चैतन्य शक्ति शरीर के लिए कहा जाता है, गीता में भी है कि शरीर नौ द्वार वाली नगरी है, पुरी है, आत्मा पुरुष इसका मालिक है। तो आत्मा अविनाशी चैतन्य शक्ति है, इसलिए हम कहते हैं कि अजर अमर अविनाशी है। शरीर जन्मता है, शरीर मरता है, शरीर को जरा व्याधि आते हैं, लेकिन आत्मा शरीर से अलग अनादि अविनाशी अजर अमर चैतन्य शक्ति है। तो संसार का खेल प्रकृति और पुरुष का बना हुआ है। अब प्रकृति कैसे कार्य करती है, आत्मा पुरुष कैसे कार्य करता है? प्रकृति में भी हम देखते हैं, प्रकृति के द्वारा भी स्थापना पालना विनाश का कार्य होता है। जमीन में बीज गिरते हैं, हवा के द्वारा, पंछियों के द्वारा ये बीज फैलते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, ये स्थापना का कार्य हुआ। बीज मिट्टी में मिलकर फिर अंकुरित होता है, पौधा पनपता है, वृक्ष बनता है, पत्ते फूल फल लगते हैं, और एक समय आता है जब वो खत्म हो जाता है। तो ये प्रकृति अपनी प्राकृतिक चेतना की शक्ति से स्थापना पालना विनाश का कार्य करती है। हम पुरुष चैतन्य शक्ति आत्मा, हम सोचते हैं, विचार करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ये स्थापना का कार्य हुआ। अभी इस हॉल में हम बैठे हैं, इसको बने हुए 30 वर्ष हुए। 30 वर्षों पहले, कुछ महीनों पहले ये हॉल कहाँ था? एक कागज पर नक्शे के रूप में था, और उसके कुछ दिनों पूर्व कोई व्यक्ति के मन में था कि मुझे ऐसा ऐसा हॉल बनाना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सारा विश्व व्यक्ति के मन की रचना है। मन में आइडियाज आते हैं, फिर हम उसको प्रैक्टिकल करते हैं, और वो ही मनुष्यात्मा जब पति तमो प्रधान बनता है, नकारात्मकता के वश होता है, आपस में लड़ाई झगड़ा मारामारी युद्ध खून होते हैं, विनाश का कार्य होता है। इस प्रकार से मनुष्यात्माएं स्थापना पालना विनाश का कार्य करती। अब हम मनुष्यात्माओं के विचार वाणी व्यवहार का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, पशु पंछी पर पड़ता है। हम कहते भी है ना कि मनुष्यात्माएं सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली प्राणी है। हमारे मन वचन कर्म का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, प्रकृति सिंपली हमें फॉलो करती है। इसलिए हमारे विचार वाणी व्यवहार का प्रभाव ही सब पर फैलता है। ये कुछ उदाहरणों से इस बात को हम समझ सकते हैं। हम कहते हैं कि जब राम राज्य था तो शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे, अर्थात हम मनुष्य आत्माएं जब सतो प्रधान थे, पावन थे, दिव्य थे, तो प्रकृति भी सात्विक थी। हमारे ही प्रभाव से जब हम आत्माएं सत्य स्थिति में हैं, तो प्रकृति भी सत्य स्थिति में होती है, और उस कालखंड को, उस टाइम पीरियड को हम सतयुग कहते हैं। ये भी आप सभी ने पढ़ा होगा, हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि ऋषि मुनि घने जंगलों के बीच तपस्या करते थे, अपने आश्रम गुरुकुल बनाकर रहते थे, तो वहां बाघ चीते शेर जैसे हिंसक प्राणी भी आश्रम में पालतू प्राणी की तरह आकर बैठ जाते थे। माना तपस्या के जो सात्विक वाइब्रेशंस फैलते हैं, पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस फैलते थे, तो इससे जंगलों के हिंसक प्राणियों पर भी प्रभाव पड़ता था। ये भी एक काव्य हमें स्कूल में पढ़ने में आता था कि एक राजा था जो बहुत प्रजावत्सल था, वेश बदल कर नगर चर्चा करता था और प्रजा की सुखकारी के लिए कार्य करता था, ध्यान देता था। वो राजा एक बार मुसाफिर के रूप में अपने ही राज्य के किसान माता के खेत में जाता है। वहां गन्ने की बहुत अच्छी खेती उगी हुई थी। वो माता भी अतिथि समझकर गन्ना काट कर जूस निकाल कर ग्लास भर के उसको देती है। राजा वो गन्ने का रस पीता है और बहुत संतुष्ट होता है, खुश होता है कि मेरे राज्य में इतनी अच्छी फसल उगती है। जब वो लौट रहा था तो उससे मन में विचार आया कि ये तो बहुत अच्छी पैदावार है, इससे राज्य के खजाने को भी कुछ प्राप्ति होनी चाहिए, इस पर टैक्स लगाना चाहिए। दोबारा जब वो आता है कुछ महीनों के बाद, वो माता फिर गन्ने का रस निकाल देती है, पर इतना नहीं निकलता है और इतना स्वादिष्ट नहीं होता है। तो वो पूछता है कि इतना ही जूस क्यों निकला और स्वादिष्ट क्यों नहीं। तब वो माता कहती है कि दयाहीन हुआ राजा, रसहीन हुई धरा। हमारी वृत्ति प्रवृत्ति का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। ये भी हमारे देश के वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने संशोधन किया था कि हम अपने बाग बगीचों में, खेतों में अगर सात्विक गीत संगीत बजाते हैं तो इससे पौधों का विकास बहुत अच्छा होता है। ब्रह्मा कुमारीज की भी कृषि एवं ग्राम्य विकास विंग है, जिसके अंतर्गत हम सभी ने भी योग के प्रयोग किए हैं। हमारे लगभग 30,000 से भी अधिक गांवों में क्लासेस चलते हैं। तो हमारे योगी भाई बहने अपने खेत में जाते हैं और योग के वाइब्रेशंस फैलाते हैं। बीज बोने से लेकर फसल काटने तक हर प्रोसेस में वे योग का प्रयोग करते हैं। इसका बहुत अच्छा परिणाम मिला है कि योग के वाइब्रेशन से भी हम अपनी फसल को बहुत अच्छी बना सकते हैं। खास दो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट यहाँ आए थे, एक तो गुजरात की दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और दूसरी उत्तराखंड की पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं और यौगिक खेती पर बहुत अच्छा संशोधन करके यहाँ कृषि जो खेत करने वाले भाई बहने हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। मतलब हमारी वृत्ति प्रवृत्ति वाइब्रेशंस का पशु पंछी प्रकृति जगत पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये भी यूरी गैलर एक साइकिक पावर वाला व्यक्ति है जिसके साथ लंदन के अल्बर्ट हॉल में दादी जानकी जी और यूरी गैलर का एक प्रोग्राम हुआ था। यूरी गैलर ने अपने थॉट पावर से उस समय अपने हाथ में बीज को अंकुरित करके बताया था। दादी जी ने यही बात कही कि अगर हम अपने थॉट्स को मेडिटेशन के द्वारा प्योर पावरफुल पर्पसफुल बनाते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस का भौतिक जगत पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारे बड़े बुजुर्ग सदा हमें सिखाते रहे हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। भोजन बनाते समय जिस प्रकार की मनोस्थिति और विचार हमारे होते हैं उसका अन्न पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए योग अभ्यास करते हुए हमें भोजन बनाना चाहिए। घर में माताएं बहनें प्यार से भोजन बनाती हैं। मंदिर में वो ही अन्न मसालों के द्वारा प्रसाद बनाया जाता है। और होटलों में बिजनेस पर्पस से अन्न बनाया जाता है। तीनों जगह वही अनाज मसाले तेल उपयोग किए जाते हैं, परंतु अंतर क्यों है? वो प्रसाद क्यों कहा जाता है? वो प्यार से बनाया हुआ भोजन क्यों अच्छा लगता है? और वो बिजनेस पर्पस से बनाया हुआ, तीनों में कितना अंतर है? तो मतलब कहने का भावार्थ ये है कि हम मनुष्य आत्माओं के मन वचन कर्म का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। इसलिए बताया है कि जब हम मनुष्य आत्माएं पवित्र देवता थे तो संसार स्वर्ग था। आज हम मनुष्य आत्माएं पतित भ्रष्ट बन गए हैं तो प्रकृति भी उपद्रवी बनती है। जब हम अपने नियम संयम मर्यादाओं में नहीं चलते हैं तो प्रकृति भी लॉ एंड ऑर्डर में नहीं चलती। तो सृष्टि का खेल इस प्रकार से चलता है, हम मनुष्य आत्माएं और हमारे प्रभाव से प्रकृति भी जब पतित बन जाती है तब सदा पावन परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। हम मनुष्य आत्माओं को सत्य ज्ञान और योग की शिक्षा देकर हमें पतित से पावन बनाते हैं। हम मनुष्य आत्माएं पावन बनते हैं तो क्रमशः पशु पंछी प्रकृति भी बदलती है और संसार स्वर्ग बनता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हम मनुष्य आत्माएं ही कितने रेस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम अपने मन वचन कर्म को पवित्र श्रेष्ठ बनाएं तो हम विश्व को भी बदल सकते हैं। इस विश्वविद्यालय का ये स्लोगन है, हम बदलेंगे जग बदलेगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। इसलिए वर्तमान कलयुग अंत के इस अति धर्म ग्लानी के समय पर स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं और ब्रह्मा मुख से हमें सत्य ज्ञान देते हैं, सृष्टि के आदि मध्यांत का राज खोलते हैं। इस ज्ञान और योग की शक्ति से हमें पावन दिव्य बनना है ताकि हम इस कलियुगी विश्व को सतयुगी दुनिया में बदल सके। तो सृष्टि का खेल अनादि अविनाशी है। कब शुरू हुआ, कब पूरा होगा, इसका यही आंसर है कि ये अनादि अविनाशी है और चक्र की चक्राकार गति से ये चलता है। जैसे प्रकृति जगत के और छोटे छोटे साइकल्स हैं जो अनादि अविनाशी रूप से चलते ही रहते हैं, जैसे दिन और रात का साइकिल, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये अविरत गति से ये साइकिल चलता ही रहता है। कितनी भी घोर अंधेरी अमावस की रात हो, फिर भी सवेरा होता है। तो ये दिन और रात का साइकिल है। इस प्रकार मौसम का साइकिल आप देखिए, गर्मी, वर्षा, सर्दी, एक के बाद एक अपने आप मौसम बदलते हैं और साइक्लिक रूप से चलते हैं। मानव का जीवन आप देखिए, जन्म, जीवन और मृत्यु, जन्म, जीवन और मृत्यु का एक अविनाशी साइकिल है। बरसात का साइकिल आप देखिए, समुद्र का पानी सूर्य की गर्मी से भाप बनता है, बादल बनता है, बरसता है, झरने, नदी बहते हैं, फिर समुद्र में आकर मिलते हैं। ये भी एक साइकिल है। तो प्रकृति जगत के ये छोटे छोटे साइकल्स अनादि अविनाशी रूप से चलते ही रहते हैं। सेम द होल वर्ल्ड साइकिल भी अनादि और अविनाशी है। इसलिए हम कहते हैं अनादि, जिसकी आदि नहीं है, अंत नहीं है, जो चलता ही रहता है, सनातन, इसलिए इसको कहा गया। हर साइकिल का अपना एक टाइम ड्यूरेशन है। डे एंड नाइट का साइकिल 24 घंटे का है। सप्ताह का साइकिल 7 दिन का है। वर्ष का साइकिल 12 मास का है। फिर वापस वही जनवरी, फरवरी, मार्च आता है। वही संडे, मंडे, ट्यूसडे आता है। तो हर साइकिल का अपना टाइम ड्यूरेशन है। इस प्रकार इस वर्ल्ड साइकिल का भी 5000 वर्ष का ये साइकिल है। प्रति 5000 वर्ष के बाद ये रिपीट होता है। तो 5000 वर्ष का ये साइकिल हर 5000 वर्ष के बाद पुनरावृत्त होता है, रिपीट होता है। इसलिए हम कहते हैं नथिंग इज न्यू, जो हुआ था वो ही हो रहा है। पर क्या हुआ था हम मनुष्य आत्माओं को पता नहीं है, क्योंकि हम त्रिकालदर्शी नहीं हैं, हम सिर्फ वर्तमानदर्शी हैं। इसलिए जो होता है हमें नया लगता है, परंतु वास्तव में ये बना बनाया खेल है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा है कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, नया कुछ भी नहीं है, जो हुआ था वो ही फिर हो रहा है। गीता में भी इसलिए कहा है कि मैं जब जब ग्लानी होती है फिर मैं आता। प्रति 5000 वर्ष के बाद, प्रति कलयुग के अंत, अति धर्म ग्लानी होती है, तब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और वे आकर हमें आलोक, परलोक, रचयिता, रचना, सृष्टि, खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान आकर हमें देते हैं। इवन ज्योतिष विज्ञान भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। ज्योतिषी बताते हैं ना हमारी रेखाओं को देखकर कि आपके जीवन में ये होगा, ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये तब बता सकते हैं ना जब ये घटनाएं पूर्व निश्चित। अगर ये घटनाएं पूर्व निश्चित ना हो तो ज्योतिष विज्ञान भी नहीं हो सकता है। तो ये 5000 वर्ष का सृष्टि खेल है, प्रति 5000 वर्ष के बाद ये रिपीट होता है, परमात्मा आकर के हमें उसका राज बताते हैं। इसलिए गीता में कहा है कि तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, कर्म फल पर नहीं। अगर तुम अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाएंगे तो अंडरस्टूड तुम्हारा भविष्य भी श्रेष्ठ बनेगा। बाकी जो कर्म हो गए उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, जैसा कर्म किया तुमको उसका फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए हम मनुष्य आत्माओं को ये अधिकार मिला है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, क्या बोलें क्या नहीं बोलें, क्या सोचें क्या नहीं सोचें। ये सेल्फ कंट्रोलिंग पावर हमें मिला है। जो हम बॉडी कॉन्शियस बन गए तो हमने अपने ऊपर का कंट्रोल गंवा दिया है। आज हम सोचते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। हमारी अपनी पर्सनालिटी में हार्मनी नहीं रही है। इसलिए योग अभ्यास करना जरूरी है ताकि हम अपने मन को शुद्ध, बुद्धि को शुद्ध और शक्तिशाली बने। इस सृष्टि चक्र को स्वस्ति के रूप में हम जानते हैं। स्वस्ति का चिन्ह हर शुभ कार्य में हम निकालते हैं, परंतु ये चिन्ह किस बात का प्रतीक है ये हम नहीं जानते हैं, है ना। चाहे कोई उद्घाटन है, शुभ प्रसंग है, हम स्वस्तिक निकालते हैं, परंतु इसके पीछे का ज्ञान हमें पता नहीं है। ये स्वस्तिक सृष्टि चक्र का प्रतीक है। इसलिए स्वस्तिक के हम 4 सरीखे भाग करते हैं। ये 4 युगों के प्रतीक है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4 युगों की आयु 1 सरीखी है, 1250 वर्ष। टोटल साइकिल 5000 वर्ष का है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और कलयुग के बाद वापस सतयुग। ये चक्र के नियम अनुसार फिर वापस सतयुग आता है। इसलिए कलयुग अंत, सतयुग आदि के संधि काल जो अभी चल रहा है, ये वर्ल्ड साइकिल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल समय है, जब संसार महापरिवर्तन को प्राप्त होगा। इसलिए परमात्मा आकर इस खेल का ज्ञान बताते हैं ताकि हम अपने वर्तमान जीवन का परिवर्तन कर सके। सतयुग, जिसको गोल्डन एज कहते हैं, स्वर्ग, वैकुंठ, इसी समय काल को, इसी समय अवधि को कहा जाता है। जब हम आत्माएं सत्य हैं, प्रकृति जगत भी सत्य है, इसलिए इस कालखंड को सतयुग, सचखंड कहा जाता है, जिसको हिंदू भाई बहने स्वर्ग, वैकुंठ के रूप में जानते हैं, मुस्लिम भाई बहने जन्नत, बहिष्ट कहते, क्रिश्चियन भाई बहने जिसको हेवन, पैराडाइज कहते हैं, सिख भाई बहने जिसको स्वर्ग, सुखधाम, सचखंड कहते हैं। यहां जो हमारी आर्ट गैलरी है, वो आप अवश्य विजिट करिए। उसमें बताया हुआ है कैसे संसार स्वर्ग था, परिवर्तन संसार का नियम है। इसलिए भल सतयुग में कोई पाप कर्म नहीं होते हैं, कोई अज्ञानता अपवित्रता नहीं है, परंतु समय और प्रकृति के संसर्ग में आकर हम आत्माएं परिवर्तन को प्राप्त होती हैं। कुछ परसेंट यहां हम 100% प्योर पीसफुल और पावरफुल है। समग्र विश्व पर एक सत्य का राज्य होता है, हम ही देवता होते हैं, प्रकृति का अपार सुख होता है। फिर त्रेता युग आता है, यहां भी हम पवित्र हैं, सुखी हैं, सब कुछ समृद्धि है, परंतु कुछ परसेंट हम यहां डाउन होते हैं। जैसे कोई चीज बिल्कुल नई है तो उनकी चमक दमक अलग होती है। 10 दिन भी अगर उस चीज को आप यूज करते हैं, वो चीज बिगड़ी नहीं है, टूटी फूटी नहीं है, खराब नहीं हुई है, पर उनकी न्यूनेस में अंतर आता है। हम कह सकते हैं सतयुग 100%, हम 16 कला संपूर्ण होते हैं, अपने परफेक्शन की स्टेज में होते हैं। फिर त्रेता युग में कुछ परसेंट डाउन होते हैं, ये राम राज्य त्रेता युग का समय है। अगर सतयुग स्वर्ग है तो त्रेता युग सेमी स्वर्ग है। कोई चीज हम बनाते हैं, थोड़ी भी डिफेक्ट है तो वो सेकेंड हैंड माल हो जाता है, A1 क्वालिटी माल उसको नहीं कहते। ऐसे सतयुग में आप देखिए स्वस्ति का हाथ राइट साइड है, वो शुभ की निशानी है कि वहां शुभ ही शुभ है, कुछ भी अमंगल नहीं है। वही स्वस्ति का हाथ त्रेता में राइट साइड से डाउन जाता है, माना राइटियस ही हम हैं, परंतु परसेंटेज हमारी थोड़ी कम होती है। द्वापर युग में आप देखिए स्वस्ति का हाथ लेफ्ट साइड जाता है, जो अशुभ की शुरुआत है। द्वापर युग से हम अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज गंवाते हैं, पुनः बॉडी कॉन्शियस बनते हैं, विशियस बनने लगते हैं, अपवित्रता आने से दुख शांति की शुरुआत होती है। फिर हम भगवान को याद करने लगते हैं, भक्ति मार्ग की शुरुआत द्वापर से होती है। एक के बाद एक धर्म आते हैं, हर धर्म स्थापक कुछ सीमित समय के लिए, सीमित समाज के लिए परिवर्तन लाते हैं, परंतु जैसे ही वो धर्म स्थापक जाते हैं, उन धर्मों का पतन भी शुरू होता है। परिणाम कलयुग आता है, स्वस्ति का हाथ लेफ्ट साइड से ऊपर जाता है, मीन्स अशुभ की अति होती है। पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, चारों ओर आप देख रहे हैं, हर मानव का मन विकारों से ग्रस्त हो गया है, संसार पतित भ्रष्ट बन गया है। ये है कलयुग। जहां अपवित्रता की, असत्यता की, दुख शांति की, भ्रष्टता की अति हो रही है। इसी को कलियुग नरक कहा जाए। इसलिए स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, नरक कोई पाताल में नहीं, देवताएं कोई काल्पनिक नहीं है, असुर कोई अलग योनि के प्राणी नहीं है। ये मनुष्य लोक ही, जब हम मनुष्यात्माएं पवित्र दिव्य थे 100%, तो हम ही देवी देवता थे। संसार स्वर्ग था, सुख से भरा था। जन्म लेते लेते समय प्रकृति के संसर्ग में आते, हम अपनी पवित्रता और दिव्यता गंवाते हैं। द्वापर युग में हम साधारण मनुष्य बन जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस बनते हैं, विकारों के वश होकर आज कलयुग के अंत में हम ही पतित असुर बन गए। जब हम गुस्सा करते हैं, देहाभिमान में आते हैं, ईर्ष्या वैर के वश होते हैं, उस समय अगर हम अपना चेहरा आईने में देखें तो हम कैसे दिखाई देते, कैसे दिखाई देते, हम ही असुर जैसे। इसलिए आज संसार नरक बन गया है। हम मनुष्यात्माएं अपनी चारित्रिक, नैतिक, आध्यात्मिक स्थिति को गंवाते हैं तो दुनिया भी विकारी पतित बन जाती है। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलियुग अंत, सतयुग आदि का संधिकाल, संगम युग का समय, जब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। हम पतित आत्माओं को सत्य ज्ञान और योग सिखाते हैं। जो आत्माएं परमात्मा के सत्य ज्ञान और योग से पवित्र बनते हैं, वे ही आने वाली सतयुगी दुनिया में जाने के लिए अधिकारी बनते हैं, योग्य बनते हैं। इसलिए वर्तमान समय परमात्मा का विश्व के सभी आत्माओं के प्रति यही आदेश है, पवित्र बनो, योगी बनो। हम मनुष्यात्माओं की पवित्रता योग के बल से हम नई दुनिया लाएंगे, नई दुनिया में जाने के योग्य बनेंगे। इसलिए ये समय है जब हमें पतित से पावन, मनुष्य से देवता बनना है। और कोई युग में और कोई जन्म में परमात्मा सृष्टि पर नहीं आते हैं। इसलिए परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं। अगर हर युग में परमात्मा आते तो कलयुग कैसे हुआ? फिर परमात्मा ने आकर क्या किया? इसलिए हर युग में परमात्मा नहीं आते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद, हर कलयुग अंत, सतयुग आदि के संधिकाल, संगम युग में परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। साधारण मानव तन ब्रह्मा तन में दिव्य प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा मुख से हमें भक्ति का फल सत्य ज्ञान देते हैं। उस सत्य ज्ञान की शक्ति से और योग अभ्यास से हमें पतित से पावन बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, अभी ही, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, अपने इस वर्तमान जीवन को जो श्रेष्ठ बनाएगा वो श्रेष्ठ सतयुगी दुनिया का मालिक बनेगा। तो इस प्रकार सृष्टि का ये खेल 5000 वर्ष का है, ये सृष्टि रंगमंच है, पृथ्वी एक रंगमंच है, सूर्य चांद सितारे इसकी रोशनी है, हम मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि खेल में एक्टर्स हैं, एक्शन करना, कर्म करने वाले, हमारे लिए ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, ये हम आत्माओं का घर नहीं है। आपने आत्मा के लेसन में इस बात को समझा है कि ये सृष्टि हमारे लिए कर्म क्षेत्र है, यहां हम आत्माएं आकर शरीर धारण कर कर्म करते हैं, कर्म फल भोगते हैं, हमारे लिए ये कर्म क्षेत्र है। इसलिए कहते हैं ना, वर्ल्ड ड्रामा है, वर्ल्ड ड्रामा है, हम इस वर्ल्ड ड्रामा के एक्टर्स हैं, शरीर हमारी ड्रेस है, परंतु जन्म जन्मांतर शरीर धारण करते करते हम आत्मा स्वरूप को भूल गए, अपने को बॉडी समझने लगे हैं, बॉडी से ही आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं युवा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। नहीं, शरीर युवा है, शरीर बूढ़ा है, शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है, शरीर काला है, शरीर गोरा है, परंतु इस एक अज्ञानता के कारण अपने वास्तविक अविनाशी आत्मा स्वरूप को भूल जाने के कारण, बॉडी कॉन्शियस बनने के कारण आज सारा विश्व विभाजित हो गए, कितने डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। घर घर में आप देखिए, ये स्त्री है, ये पुरुष है, कितने भेदभाव रखे जाते, ये बेटा है, बेटी है, कितना फर्क रखा जाता है, काले गोरे के भेदों से इतिहास भरा हुआ है, हम उसके भुक्त भोगी है, अनुभवी है। धर्म, जाति, भाषा के नाम पर कितने झगड़े हैं। तो कहां ये विश्व परिवार था, आज देह अभिमान के कारण पूरा विश्व विभाजित हो गया है, आपस में कितना वैर वैमनस्य हो गया। इसलिए परमात्मा आकर हमें ये सत्य रियलाइज कराते हैं, और योग माना वो अभ्यास हम नियमित करते हैं सोल कॉन्शियसनेस का। तो शरीर ड्रेस है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये ड्रेस नहीं हूं, शरीर रूपी ड्रेस पहनकर आत्मा एक्टर वैरायटी रोल्स प्ले करता है। सुबह से लेकर रात तक आप देखिए कितने रोल्स हम प्ले करते हैं। बच्चों के आगे हम माँ बाप हैं, माँ बाप के आगे हम बच्चे हैं, पति के आगे पत्नी हैं, ऑफिस में आप कर्मचारी हैं, कितने वैरायटी रोल्स हम प्ले करते हैं। पर हम ये रोल्स नहीं हैं, हम ये शरीर ड्रेस नहीं हैं, हम आत्मा हैं। इस अवेयरनेस में अब हमें रहना है। एक एक्टर आप देखते हैं, कोई फिल्म में राजा का रोल प्ले करता है, कोई फिल्म में ऑफिसर का रोल प्ले करता है, कोई फिल्म में वो शराबी का पार्ट प्ले करता है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि ये एक्टर शराबी है, ये एक्टर राजा है, नहीं, ये रोल्स प्ले करते हैं। अगर वो घर में जाके कहे मैं राजा हूं, मेरे हुक्म पर सबको चलना है, तो घर वाले कहेंगे ना, भाई आप फिल्म में राजा है, यहाँ राजा नहीं है। तो इस प्रकार आज हम रोल कॉन्शियस हो गए हैं। मैं इनका पति हूं, मैं इनकी सास हूं, मैं इनका बॉस हूं, नहीं, ये हमारे रोल्स है। हम तो आत्मा हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। हम इस ओरिजिनालिटी में स्थित होकर अगर अपने रोल्स प्ले करेंगे तो बहुत अच्छी रीति हम ये रोल्स प्ले कर सकते हैं। अब इस वर्ल्ड ड्रामा की विशेषता है कि एक ना मिले दूसरे से। यहां आप देखो हरेक की शकल भी अलग अलग है, अकल भी अलग अलग है। हर आत्मा के अपने अपने संस्कार है, हरेक अपना अपना पार्ट संस्कार अनुसार प्ले करते हैं। इसलिए इस बेसिक सत्य को याद रखेंगे तो हमारा व्यर्थ चिंतन नहीं चलेगा कि ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा कैसा है। हर आत्मा के अपने संस्कार है, इसलिए वो संस्कार अनुसार जो रोल मिलता है वो प्ले करता है। हमें इस बात को समझकर माइंड नहीं करना है, हमें उसकी ओरिजिनालिटी को देखना है। जो कल आपने समझी है कि ओरिजिनली हरेक आत्मा शांत है, शुद्ध है, सत्य है, प्रेम स्वरूप है। इसलिए हर आत्मा को, स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, गरीब है, शाहूकार है, देश के हैं, विदेश के हैं, हर आत्मा को जीवन में क्या चाहिए, क्या चाहिए? शांति, सुख, आनंद, प्रेम, सत्यता। हर आत्मा को जीवन में ये चाहिए, क्योंकि हमारी ओरिजिनल नेचर शांति है, प्रेम है, पवित्रता है, हम सत्य है ओरिजिनल, इसलिए हमें ये जीवन में चाहिए। तो हमें वापस अपनी ओरिजिनल नेचर को याद रखना है, रियलाइज करना है, और परमात्मा जो इन गुणों का सागर है, अल्टीमेट सोर्स है, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता का, हमें उनसे अपने आप को कनेक्ट करना है, ताकि हमारी ओरिजिनल नेचर फिर से इमर्ज हो जाए और उस अनुसार हम जीवन जी सके। इस वर्ल्ड ड्रामा में हमने कुछ भूलें कि जिस कारण ये खेल आज बिगड़ गया। एक तो हम आत्मा एक्टर है ये भूल गए, हम ड्रेस से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे, उसके कारण पूरी जीवन व्यवस्था बिगड़ गई। दूसरी बात, हरेक एक्टर का कार्य क्या है? अपना रोल अच्छी रीति प्ले करना, दूसरे एक्टर सही करते हैं नहीं करते हैं ये देखना किसका काम है? डायरेक्टर का काम है। हमने ये भूल की कि हम अपने एक्शन पर ध्यान देने के बजाय दूसरों को देखते हैं, ये ऐसा है वैसा है कैसा है, उनका कर्म ऐसा है, दूसरों को हम देखते रहते, ये नहीं करता है तो मैं क्यों करूं, ये ऐसा करता है तो हम भी ऐसा करेंगे। हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों को फॉलो करते हैं, इसलिए ये ड्रामा बिगड़ गया है। परमात्मा आकर के हमें कहते हैं कि हमें अपनी ओरिजिनल नेचर पर ध्यान देना है, अपने असली पिता परमात्मा को याद करना है। सी गॉड फादर, फॉलो गॉड फादर, हमें उस परमात्मा पिता को फॉलो कर। बाकी हरेक के वैरायटी स्वभाव संस्कार है, कोई शांति से कार्य करेगा, कोई गुस्से से करेगा, कोई इरेस्पॉन्सिबल होके करेगा, कोई रेस्पॉन्सिबल होकर करेगा, हरेक के अपने अपने हैं। इसलिए मुझ एक्टर का कार्य है अपनी एक्शन पर ध्यान देना। अगर हमें दूसरों को अच्छा सिखाना भी है तो हम अपने कर्मों को अच्छा करें, हम एग्जाम्पल बने, अपने आप जिसको सीखना है वो हमें देख करके सीखेगा। एक दृश्य में चार एक्टर है। अब डायरेक्शन दिया गया है कि एक को रोना है, दूसरे को गुस्सा करना है, तीसरे को चुप रहना है, चौथे को हंसना है। तो हरेक एक्टर का कार्य क्या है, उनको जो कहा है वो करना है। पर एक को रोता देख दूसरा भी रोए, तीसरा भी रोए, चौथा भी रोए तो ड्रामा बिगड़ जाएगा। आज वो ही हुआ है, वो भ्रष्टाचार करते हैं तो हम भी करेंगे, ये भी करेगा वो भी करेगा, तो पूरी दुनिया आज भ्रष्ट बन गई। इसलिए अब इस वर्ल्ड ड्रामा के डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर स्वयं परमात्मा जो इस ड्रामा का राज बताते हैं, वो आकर फिर से हम एक्टरों को अपना वास्तविक परिचय दे रहे हैं कि ये तो आपके रोल से है, ओरिजिनली आप आत्मा है और मुझ परमात्मा पिता के बच्चे हैं। वो आकर हमें बेस्ट एक्शन करना सिखलाते हैं। इसलिए जो अपने वर्तमान जीवन को परिवर्तन करेगा, परमात्मा की आज्ञा पर चलेगा, इस महापरिवर्तन वेला में जो भगवान के आदेश पर अपने मन वचन कर्म को श्रेष्ठ बनाएगा, वो इस वर्ल्ड ड्रामा का हीरो एक्टर बनेगा और वो ही आत्माएं सतयुगी दुनिया में जाने के योग्य बनेंगे। तो सार रूप में यही इस लेसन के अंत में बताना है कि अब ये साइकल पूरा हो रहा है। जैसे नाटक पूरा होता है, एक्टर्स क्या करते हैं, ड्रामा की ड्रेस उतार कर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस घर जाते हैं। तो अब हमें ये शरीर रूपी ड्रेस को यहां ही छोड़ना है और अपनी ओरिजिनल प्योर पीसफुल स्टेज में स्थित होकर वापस घर जाना है। क्योंकि क्योंकि हम आत्माओं का जो असली घर है परमधाम, जहां हम अपनी ओरिजिनल प्योर स्टेज में रहते, इसलिए अब वापस घर जाना है। हम इस खेल में आए, अपने आप को भूल गए, असली पिता को भूल गए, अपने असली धर्म कर्म को भूल गए, असली घर को भी भूल गए। इसलिए हमारी बुद्धि इस दुनिया में ही लग गई है। बिल्कुल। अब हमें अपने असली स्वरूप में स्थित होना। हर आत्मा अपने पार्ट अनुसार होलसेल आत्माएं वापस जाएगी और नंबरवार अभी अभी जो जिस युग के लायक बनेगा वो उस युग में आएगा। सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। अभी ये समय है, भगवान सबको हीरो एक्टर बनने का ज्ञान दे रहे हैं, पर जो जिस युग के योग्य बनेगा वो उस युग में आएगा। जाना सबको वापस है, आना नंबर वन है। अच्छा है तो ऐसा बनना है हमें, भगवान तो ऑफर कर रहा है, इसलिए आप सबको यहाँ क्यों बुलाया गया है, यही संदेश देने के लिए कि ये समय जो भी एक्टर बनता है वो लक्ष्य क्या रखता है, हीरो बनने का, है ना। हरेक चाहेगा कि मैं हीरो बनूं, साइड एक्टर नहीं, विलन नहीं, हीरो बन, जो भी रोल प्ले करूं हीरो एक्टर बन के करूं। नहीं, आप भूल गए ना, आप भूल गए कि आप भगवान के बच्चे, हम भगवान के बच्चे हैं। ओरिजिनली हम भगवान जैसे ही सत्य है, शुद्ध है। सिर्फ हम आत्माएं इस साइकिल में आते हैं, परमात्मा नहीं आते हैं, इसलिए वो एवर प्योर है। हम भी सतयुग त्रेता में प्योर थे, द्वापर से विकृति शुरू हुई, कलयुग में बिल्कुल बिगड़ गए। देखो, एक्टर माना एक्शन करना, कर्म करना। देखो, फिल्म जगत में कोई एक्टर आता है, वो अपनी एक्शन से, सुनिए भाई, फिल्म जगत में कोई एक्टर बनता है पर वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो सोचता है मैं निकल जाऊं। बाकी तो हर कोई क्या सोचता है, मैं टॉप पर जाऊं, हीरो एक्टर बन। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जन्म मरण का चक्र दुख का कारण है। जन्म मरण दुख का कारण नहीं है, विषय विकार अज्ञानता हमारे पाप कर्म दुख का कारण। इसलिए ड्रामा से निकलना नहीं है, पाप कर्मों से छूटना है, बुराइयों से छूटना है, अज्ञानता से छूटना है। अपने कर्मों को हमें श्रेष्ठ बनाना है, जिनको अपने श्रेष्ठ कर्मों से सफलता सुख पाना नहीं आता है वो कहेंगे हम तो निकल जाए। इसलिए अब तक जीवन के लिए कोई लक्ष्य नहीं था हमारे पास, हर कोई कहते थे छूट जाए, मोक्ष मिल जाए, क्या फायदा है, वहां जाके आप बैठ जाएंगे, कोई पढ़ लिख करके बैठ जाए, कुछ काम न करें, कोई कमाए नहीं, समाज के उपयोगी न बने, तो लोग क्या कहेंगे, भाई तुम इतने पढ़े लिखे हो, कुछ काम करो, कुछ कमाओ, ऐसे ही बैठे हो तो ऐसे ही शून्य नहीं बन जाना है। हमें प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ दुनिया बनानी। नहीं भगवान किसी को रिजेक्ट नहीं करता है। जो एक्टर बना इस वर्ल्ड ड्रामा का, हरेक को छोटा मोटा रोल प्ले करना ही है। हाँ, आप सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हीरो एक्टर बनना चाहते हैं तो अभी डायरेक्टर कहे ऐसे हमें करना है। तो ये है सृष्टि का खेल। हम नहीं, अभी जो हमारे पास है वो तो ईसवी सन का ज्ञान है, यीशु के समय का इतिहास है। हमारे पास पूरे साइकिल का इतिहास ही नहीं। माना 2023 तो ईसवी सन है ना, यीशु के आने के बाद से जो गिनती की गई वो है। माना हम कलयुग अंत में, देखो चिन्ह तो देख रहे हो ना, कलयुगी दुनिया के भ्रष्टता के, धर्म ग्लानी के आसार तो देख रहे हैं। ये कलयुग अंत का समय। ये टॉपिक मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत थोड़ा समझना पड़ेगा। कर्म गति का एक लेसन होता है, पर वो आपका नहीं हुआ है। आप वहां वापस सेंटर पर जाएंगे और जो इसका फाउंडेशन कोर्स है, 7 दिन के लेसन्स होते हैं, इसमें एक पूरा लेसन जन्म मरण के चक्र पर है, कर्म गति का, उसमें ये बातें आएगी।
अगर कोई सुधरा नहीं तो वो तो सत्यजुट में नहीं जाएगा,
तो दंड खा के भी सुधरना पड़ेगा। नहीं, सतयुग नहीं जाएगा, परम धाम भी जाना है तो वापस ओरिजिनल स्टेज में जाना है ना, क्योंकि वहां हम आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। इसलिए अपने पाप कर्मों का हिसाब किताब हम ज्ञान और योग की शक्ति से चुकाएं, नहीं तो सजा खा के चुकाएं। और सजा तो खा ही रहे हैं, बीमारियां हैं, विघ्न हैं, समस्याएं, मानसिक कितना आजकल टेंशन डिप्रेशन, ये क्या है, सजा ही तो खा रहे। किस पर?
प्रेग्नेंट लेडीज।
हाँ बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम चलते हैं, हमारी मेडिकल विंग ही ये कार्य कर रही। हमारी एक डॉक्टर शुभदा बहन है, बहुत अच्छी स्पीकर है और प्रैक्टिकल प्रयोग करती है बॉम्बे से। वो है, आप लोगों को फिर टाइम निकाल के आना पड़ेगा ना, बहुत सारी बातें। पर पहले हम ये चाहते हैं कि हर डॉक्टर खुद ये सीखे और ये प्रयोग करे। आप ये जो बेसिक राजयोग फाउंडेशन कोर्स है वो अच्छी तरह आप सीखेंगे तो अपने आप खुद भी योग के वाइब्रेशन सिखा सकते हैं। देखो अभी तो हमें पहले खुद का सोचना है। यही हम करते हैं कि जब हमारी बात आती है तो हम दूसरों का सोचने लगते। आप अच्छे बनेंगे आपको देखकर और अपने आप बनेंगे, है ना। आप अच्छे बनेंगे, आपके बच्चों में संस्कार आएगा, परिवार में आएगा। शुरुआत खुद से करनी है। चलो योग अभ्यास करेंगे सभी व्यवस्थित बैच में। परमात्मा नहीं भेजते, डायरेक्टर एक्टर को नहीं कहते तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, नहीं, एक्टर को खुद पता है मैं मुझे कब जाना। अलर्ट होके बैठेंगे, अपना डायरी पर्स फाइल साइड में रख दे। आसपास की व्यक्तियों से वस्तुओं से परिस्थितियों से कुछ क्षणों के लिए अलग हो जाइए, साक्षी बन जाइए। मस्तक बीच ब्रकुटी में
शिव दर्शन,
गीत नहीं बजाओ भैया, साइलेंस ट्यून बजा। अपने अविनाशी आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए। मैं आत्मा, इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की कंट्रोलर हूं। मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। मैं आत्मा, शरीर धारण कर वैरायटी रोल्स प्ले करते हैं। मेरा बाह्य जीवन, मेरी आंतरिक आत्मस्थिति का ही प्रतिबिंब है। अगर मुझे बाह्य संसार को व्यवस्थित करना है मुझे अपनी आत्मस्थिति को डिसिप्लिन्ड बनाना है, एनरिच करना है। अब मुझे पता है मैं आत्मा, ओरिजिनली सत्य हूँ, चैतन्य मैं, शांत शीतल मैं, आत्मा शुद्ध प्रबुद्ध हूँ, मैं परम पिता शिव बाबा की संतान, प्यारी शिव पिता आप शांति के सागर, शांति दाता है, आपकी संतान में आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ। मैं स्वयं शांत रहूंगी, शांति दूत बनकर सर्वत्र शांति फैलाऊंगी। प्यार के सागर मेरे प्यारे शिव बाबा, आपकी अमर संतान मैं आत्मा भी प्रेम स्वरूप, मुझे सबके साथ रूहानी प्यार से चलना है, सबको सुख देना है। मुझे ये ही निश्चय और खुशी है, मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूँ। मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक शक्ति दिव्य ज्योति, शांति।
दर्शन।